प्रातः क्लास चल रहा था 10/11/1966 सुप्रीम सूल बाप आते हैं तो भारत को फिर से आकर के साहूकार बनाई देते हैं। क्योंकि भारत ही सबसे गरीब बनता है, वही भारत फिर बहुत साहूकार बन जाता है। इसलिए इसका नाम ही पड़ा है भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माना लगा रहने वाला। जो ईश्वर ने आकर के ज्ञान धन दिया है, सुप्रीम गॉड फादर के रूप में दिया है, वो सुप्रीम गॉड फादर का वर्षा लेने वाला गरीब भारत है। जैसा नाम वैसा काम साबित हो जाता है। स्थूल धन संपत्ति तो मनुष्य के हाथों का कमाया हुआ मैल है, असली ज्ञान धन तो सुप्रीम सोल गॉड फादर ही देता है। आत्माओं का बाप, और आत्मा रूपी बच्चों में जो बड़े से बड़ा बच्चा है, सभी मनुष्य आत्माओं का बाप, मनुष्यों का बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर का बड़े से बड़ा बच्चा, जिसकी परंपरा आज तक भारत में चली आ रही है कि कोई भी बाप अपने बड़े बच्चे को ही प्रॉपर्टी सौंपता है। हिस्ट्री में देखा जाए तो राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई का वर्षा सौंपा, और सुप्रीम सोल गॉड फादर जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है, तीनों काल के ज्ञान का ज्ञाता है, सत्य का ज्ञाता है। सच्चाई को जानता है और 100% जानकार है। वो अपनी जानकारी का ऊंचे से ऊंचा वर्षा, अपने बड़े बच्चे को देता है। वो बड़ा बच्चा ही अंतिम जन्म में बहुत गरीब बनता है, और गरीब निवास बाप आकर के अपने गरीब से गरीब बच्चे को दुनिया का बड़े से बड़ा साहूकार बना देता है। बनाए देता है क्या? पार्षद भी करता है? नहीं, वो त्रिकालदर्शी होने के कारण जानता है। कि मेरे ज्ञान धन के ऊंचे से ऊंचे वर्षे को कौन सा बच्चा ज्यादा महत्व देता है? ऐसा महत्व देने वाला बच्चा जो अपने तन की भी परवाह न करे, अंतिम जन्म में स्थूल धन तो होता ही नहीं, मन की प्रॉपर्टी होती है, वो मन भी बहुत चंचल हो जाता है। जो गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन ने माना कि ये मन बहुत चंचल है, तो गीता के भगवान ने कहा भले बहुत चंचल है परंतु इसे बार बार के अभ्यास से और इस विनाश होने वाली दुनिया के बार बार स्मरण से वैराग्य लाने से इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है। किसी बीच गीत चला, धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुलारे, तुझे आना ही होगा, धरती हो गई माता, आकाश हो गया पिता, परंतु ये जड़ बुद्धि मनुष्यों का गाया हुआ गीत है। चैतन्य आत्माओं का बाप, बेहद का बाप, इसका बेहद का ही अर्थ बतावेंगे। धरती को माता कहा जाता है, दुनिया की बड़ी से बड़ी माता, कोई जड़ जमीन की बात नहीं है। माताओं के बीच उस बड़ी माता की बात है जिसका नाम सुप्रीम सोल बाप आकर के ब्रह्मा रखते हैं। मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। और ब्रह्मा नामधारी तो बहुत हुए हैं, उनमें भी जो परे से परे पार्ट बजाने वाला, अब्बल नंबर का पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा नामधारी है, उसी का शास्त्रों में गायन है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परम ब्रह्म परे ते परे पार्ट बजाने वाला ब्रह्म ने बड़ा, मां माने मां ब्रह्मा, कैसा ब्रह्मा? परम ब्रह्म, जिसे कहते हैं पिता, परम पिता, परे से परे रहने वाला पिता। तो वो पिता इस बड़ी से बड़ी माता को बुलाता है, आजा मेरे नजदीक आजा। आत्मा को बुलाता है, आत्मा पहले तो बच्चा है बाप का, इसलिए गीत बनाने वाले ने अनजान में ही गीत बनाई दिया, आजा प्रेम द्वारे, प्रेम दुलारे, आना ही होगा। पांच हजार वर्ष पहले भी कहा था ना बच्चे, जैसे गीता में कहा है अर्जुन से, हे अर्जुन, ज्ञान धन कमाने वाले अर्जुन, ज्ञान धन अर्जन करने वाले अर्जुन, तुम अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते हो, ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप ने कहा, बच्चे तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हो। क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि तुम जन्म मरण के चक्र में आने वाले हो, ये मृत्यु ऐसा एक्सीडेंट है बड़ा, इस एक्सीडेंट के बाद पिछले जन्मों का आत्मा सब कुछ भूल जाती है, तो नहीं जानते हो। और ये भी बताया, कि 84 जन्मों का चक्र है, 84 लाख जन्मों का चक्र नहीं है। वो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं। जो मैं तुमको 84 लाख जन्मों की बात बताऊं, ये तो देहधारी धर्मगुरुओं ने बात बनाई दी है, ताकि उनको 84 लाख जन्मों का ब्योरा ही न देना पड़े। 84 का चक्कर बताएंगे तो ब्योरा भी बताना पड़ेगा, इसलिए 84 लाख जन्म बताई दिए, चक्कर खत्म बताने का। परंतु गीता में न 84 लाख लिखा है, न 84 जन्म लिखे हैं, जो दुनिया का पहले से पहला शास्त्र है। शास्त्र अर्थात शासन करने का विधान, किसने बनाया? ईश्वरीय विधान है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने का विधान। उस गीता में लिखा है कि तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हो, परंतु कितना जन्म वो तो लिखा ही हुआ नहीं है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि द्वैतवादी द्वापर युग से जो लिखा हुआ शास्त्र है, भले अव्वल नंबर का शास्त्र है, जिसे मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंच, अर्थात ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, जिसने इस सृष्टि पर आकर के ऊंचे ते ऊंचे दीन अर्थात धर्म की स्थापना की थी। तो वो बाप ने 84 जन्मों का हिसाब बताया है, लेकिन द्वापर युग में जिन ऋषि मुनियों ने शास्त्र लिखे और इन ऋषि मुनियों में जो अव्वल नंबर गाया हुआ है, वेद व्यास कहो, गीता में व्यास प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिला, वो भी दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य था। गुरु लोगों ने कह दिया है व्यास भगवान, मनुष्य कैसे भगवान हो सकता? मननात् मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतन करने वाला मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतन वही कर सकता है जिसको मन हो, और मन तो बड़ा चंचल होता है। देवताओं का ही मन चढ़ायमान नहीं होता है तो भगवान का मन कहाँ से चलायमान हो जाएगा। इसे साबित होता है कि मनुष्य का मन चंचल होता है। मनुष्य का नाम है अर्जुन, ज्ञान का अर्जन करने वाला, और ज्ञान का आधार लेकर के सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। तो मनुष्य गुरु कैसे बता देंगे शास्त्रों में 84 जन्मों की बात या 84 लाख विस्तार में हवाला तो दे ही नहीं सकते। तो बाप बताते हैं तुमने पूरा 84 जन्म लिया है। तुमने माने किसने? किससे बात किया? अरे है अपने बड़े बच्चे से बात किया कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ऑलराउंड पार्टधारी तुम हो, और जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनके पूरे 84 जन्म नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हारा नाम शास्त्रों में गाया हुआ है, जिसको किसी ने मरते हुए नहीं देखा, जिसको किसी ने जन्म लेते हुए नहीं देखा, दुनिया में कोई नहीं जानता कि उसके माई बाप कौन है, किसके है। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है सभी धर्मों में मनुष्यों के द्वारा माना हुआ है। इस्लामी मानते हैं आदम, मुसलमान, क्रिश्चियन मानते हैं एडम, सृष्टि का पहला मनुष्य, जैनी लोग भी मानते हैं आदिनाथ, हिंदुओं में तो आदिदेव प्रसिद्ध है, तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। कि आदि और अंत का कोई को पता नहीं है, उसको बोला तुमने पूरा एक दिन भी अधूरा नहीं, पूरा 84 जन्म लिया, ऐसा हिसाब करो तुम कौन से कुल के हो, तुम सूर्यवंशी कुल के हो। इस संसार में ऊंचते ऊंच कौन देखने में आता है, है? सितारे देखने में आते हैं कि चंद्रमा देखने में आता है कि सागर देखने में आता है या पृथ्वी या पहाड़ देखने में आते हैं, है? कौन सूर्य देखने में आता है क्या? नौ ग्रह उसके नीचे हैं चक्कर लगाने वाले, ऊंचते ऊंच सूर्य, परंतु वो सूर्य तो जड़ है, जड़ रोशनी देने वाला। उसकी मानेंद एक चैतन्य सूर्य भी है जो ऊंचते ऊंचे है। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो अंजाम करता है, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाऊंगा, ज्ञान की रोशनी देने वाला। तो गीता में लिखा है कि मैं जब आता हूं तो जिसको पहले पहले ये ज्ञान देता हूं, ज्ञान की रोशनी देता हूं, उसका नाम क्या रखता हूं, उसका क्या टाइटल देता हूं? है सूर्य नाम रखता हूं। बाप का टाइटल किसके ऊपर आता है? बच्चे के ऊपर आता है। जो शास्त्रों में कौन गाया हुआ है सूर्यवंशी, राम गाया हुआ है। सूर्य कलाओं से परे होता है। देवताएं कलाओं में बांधे हुए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 16 कला संपूर्ण। शास्त्रों में सतयुग को भी 16 कला संपूर्ण बताया है, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो राज्य सतयुग में आदिकाल में जिसे पहले पहले मिला वो इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है। क्या नाम? नहीं, राम तो बाप है, पत्ता नहीं। वो मनुष्य शक्ति रूपी वृक्ष का बाप है, बीज है। बीज कहाँ से आता है? माता में से आता है, बड़े बच्चे में से आता है, बहनों में से आता है, कहाँ से आता है? बीज बाप में होता है। तो बीज रूप बाप साबित होता है कि सतयुग से भी पहले था। जो सतयुग का पहला पत्ता कृष्ण 16 कला संपूर्ण गाया हुआ है, जिसे कहते हैं कीर्तन में गाते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, बचपन में कृष्ण का नाम है, राज्य भाग प्राप्त होता है तो नारायण नाम पड़ता है, वो ही नाम है जिसका अर्थ भारत है। बा माने ज्ञान की रोशनी, नारायण माने नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। कहाँ रहता है? ज्ञान जल में सदैव वास करता है। सदैव वास करता है, ये जब सुप्रीम सोल गॉड फादर इस सृष्टि पर आता है तब ज्ञान जल में वास करता है, या वो आत्मा सदैव ज्ञान जल में वास करती है। है भारत है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चार सीन में जो पार्ट बजाता है हीरो पार्टधारी, भारत नाम एक युग का है, दो या चार युग का है, या उससे भी पहले का है? है? हाँ, भगवान बाप आकर के ज्ञान की रोशनी जो देते हैं, उस ज्ञान की रोशनी का विस्तार व्याख्या करने वाला, जिसे कहते हैं सांख्य योग। सांख्य का अर्थ ही है सह आख्या, माना व्याख्या के साथ जो दिया जाए। जैसे वेद हैं, वेदों की ऋचाएं हैं, ऋचाएं तो हुई लेकिन व्याख्या किसी को नहीं मिली, रिजल्ट क्या हुआ? लोगों ने वेदों की ऋचाओं को बुद्धि से समझा या नहीं समझा? हैं? नहीं समझा। जब नहीं समझा तो आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर वेदों का ज्ञान हो। ऋचाओं की रटंती हो सकती है, लेकिन उनकी गहराई का ज्ञान किसी को न होने के कारण आज कोई भी वेद सुनता नहीं, सुनाता नहीं, पढ़ता नहीं, पढ़ाता नहीं। क्यों है? क्योंकि उनकी व्याख्या नहीं हुई। और हुई है तो कोई जानता नहीं है, इतनी पुरानी बात हो गई कि उन वेदों की व्याख्या किसने की, कब कब की। अभी ईश्वरीय ज्ञान से ये बात क्लियर होती है। वेदों की व्याख्या वेद व्यास के द्वारा हुई, नहीं तो वेद वेद वाक्य वेद वाणी ब्रह्मा के मुख से निकली है, जिसकी रिहर्सल कहो, शूटिंग कहो, अभी कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम युग पर ब्रह्मा के द्वारा हो रही है। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले या वेदों की व्याख्या निकली? वेद निकले, जिसे हम ब्राह्मण क्या नाम देते हैं, मुरली नाम देते हैं। ये अगड़म बगड़म नाम क्यों दे दिया? मुरली नाम क्यों दे दिया? इसलिए दे दिया कि भक्ति मार्ग में कृष्ण के हाथ में कांच की मुरली देते हैं, माना संगम युग में ब्रह्मा के बुद्धि रूपी हाथ में कहो मुख में कहो जो वेदवाणी मुरली निकली वो काठ की मुरली हो गई। कठबुद्धि के हाथ में मुरली हो गई। कठबुद्धि क्यों कहा है? क्योंकि कोई समझता नहीं है। प्रश्न उत्तर किए जाएं, जैसे गीता में लिखा है परिप्रश्न न सेवया, कोई बात समझ में ना आए तो प्रश्नोत्तर करके आत्मा की सेवा करनी चाहिए ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा। परंतु ऐसा एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं जो मुरली में आए हुए हर वाक्य का प्रश्नोत्तर के रूप में समाधान कर सके। किसी ने देखा हो सुना हो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ब्राह्मण को जो बेसिक में हो या एडवांस में हो, तो खड़े होके नाम बता सकता है। कोई नहीं देखा। जो मुरली में आए हुए हर महावाक्य का समाधान कर सके, देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा, क्योंकि भगवान बाप मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताने वाला बाप ऐसा पंडा है जो गुप्त पार्ट बजाता है। गुप्त है अभी तक भी या प्रत्यक्ष है? गुप्त है। गुप्त होने के कारण ही आज भले अथवा यज्ञ के आज में भी भले खून से लिख करके देते हैं, देते थे, आज सरकारी स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं निश्चय पत्र कि ये हमारा बेहद का बाप है। आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। आज बाप को मानते हैं, निश्चय बुद्धि के रूप में जन्म लेते हैं, बाप का बच्चा बनते हैं और कल मर जाते हैं। तो जन्म मृत्यु के चक्र में है या अमर लोक में है? जन्म मृत्यु के चक्कर लगाए रहे हैं, क्योंकि कोई भी छाती ठोक करके दूसरों को समझा ही नहीं सकता। किसी सृष्टि पर आया हुआ निराकार सो साकार बाप जिसकी यादगार दुनिया में शिव के मंदिरों में मिलती है, शिवलिंग के रूप में, जिस शिवलिंग में लिंग रूप साकार भी है और बिंदु रूप निराकार भी है, परंतु वो बिंदु रूप निराकार सुप्रीम सोल बाप की पूजा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप ने ब्रह्मा मुख से पहले ही बता दिया कि न मैं पूज्य बनता हूं और न मैं पुजारी बनता हूं, हाँ मैं तुम बच्चों को आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाता हूं। तो कोई तो बच्चा बाप समान बनता होगा, जिसकी यादगार आज भी भारत में कहते हैं बड़ा भाई किसके समान होता है, बाप समान होता है। मनुष्य आत्माओं में जो रंगमंच पर इस सृष्टि पर जन्म जन्मांतर हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं है, वो हीरो पार्टधारी आत्मा गुप्त रहकर ही पार्ट बजाती है, उस बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। जो मनुष्य शक्ति का बाप है जिसे गीता में क्षेत्र कहा है, धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री धर्मरूपी धारणाओं के क्षेत्र में और धारणाओं के आधार पर कर्मों के क्षेत्र में जो यज्ञ पिता गाया हुआ है, जिसके कारण इसी यज्ञ का नाम क्या है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये रुद्र नाम किसका है, रुद्र माना ही रौद्र रूप धारण करने वाला। शिव कभी भी रौद्र रूप धारण नहीं करता, जो कहता है मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरे शरीर का नाम नहीं है। अस्सी साल हो गए ब्राह्मणों को उस शिव की वाणी सुनते सुनते, बच्चों को प्यार की भाषा में ही समझाया कि रौद्र रूप कवि धारण किया, बच्चों ने कोई बातें मानी या नहीं मानी, अभी भी नहीं मानते हैं, तो भी बाप ने प्यार का सागर का पार्ट बजाया, या धर्मराज का मार का पार्ट बजाया। तो वो तो प्यार का सागर है आत्माओं का बाप, लेकिन इस सृष्टि में आकर के जिस मनुष्य आत्मा को पकड़ता है मुकर्रर रथ के रूप में, उसी को गीता में कहा है। गीता में जिसका नाम अर्जुन दिया, बोला इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। इदम, इदम माने किदम, क्या इदम माने इदम, इदम किसकी तरफ इशारा किया, इदम माने यह किसकी तरफ इशारा किया है, अरे भगवान ने किसकी तरफ इशारा किया, ये शरीर, कौन सा शरीर, कौन सा शरीर रूपी रथ है, अर्जुन का शरीर रूपी रथ। क्षेत्र है इसे यज्ञ कुंड कहो, यज्ञ पिता कहो, एक ही बात है, क्योंकि इस पिता से ही इस सृष्टि के कोई भी धर्म की आत्माओं को कंट्रोलिंग पावर कहो या राजाई का वर्षा कहो, प्राप्त होता है। अगर मनुष्य सृष्टि का बाप ही बाप कहा जाता है तो कुछ वर्षा देता होगा या नहीं देता होगा, मुफ्त में बाप कहा जाता है, वर्षा देता है। हाँ ये जरूर है कि सूर्यवंशी बाप सूर्य की रहबरी में कौन है असली ज्ञान सूर्य, रहबरी माने छत्र छाया में, जो सीढ़ी के चित्र में नारायण को छत्र छाया नहीं दिखाई और राम को है छत्र छाया के नीचे दिखाते हैं, जो मुरली में बोला राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, तो वो सतयुग के आदि का पहला पत्ता कृष्ण है, उस पहले पत्ते को जन्म देने वाला बीज रूप बाप सतयुग से भी पहले कोई युग हुआ है जिसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, जहां से पुरुष शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला आराम से रहने वाला पुरुषों में उत्तम प्रत्यक्ष होता है, पुरुषों में अर्थात आत्माओं में उत्तम पार्टधारी हीरो पार्टधारी प्रत्यक्ष होता है, कौन से युग में, संगम युग में। कौन सा वर्ष है जहां से पुरुषों में उत्तम पार्टधारी की प्रत्यक्षता होती है,
है
76। मुरली के अनुसार घोषित उससे पहले पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सामान्य संगम युग कहेंगे, पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। तो वो पुरुषोत्तम पार्टधारी आत्मा का पार्ट दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है, या कोई भी आत्मा अपने पार्ट को स्वयं प्रत्यक्ष करती है? मुरली और अव्य कवाणी में क्या बोला? मैं किसी के पार्ट प्रत्यक्ष नहीं करता हूँ, नहीं बताता हूँ कि तुम्हारा क्या पार्ट है, कब कैसा पार्ट है। हर एक आत्मा स्वयं ही अपनी वाचा से, अपनी दृष्टि से, अपने वाइब्रेशन से, अपने कर्मों से संगम युग में अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगी। बाकी बाप दादा कोई भी बच्चों को बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे कि तुम्हारा क्या पार्ट है। तो जैसे इस चार सीन वाले सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग ब्रॉड ड्रामा में आत्माएं इस रंगमंच पर सतयुग के आदि से कलयुग के अंत तक नंबरवार उतरती हैं या इकट्ठी आ जाती हैं। वृक्ष में पहला पत्ता पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा आता है। तो शूटिंग भी होती होगी या नहीं होती होगी? रिहर्सल में भी यही बात है कि पुरुषोत्तम संगम युग जब से प्रत्यक्ष होता है तब से शूटिंग पीरियड में पुरुषोत्तम संगम युग के अंत तक जब तक महामृत्यु का टाइम ना आए 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को अपने अपने पार्ट की प्रत्यक्षता कहो, जन्म कहो, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है। अपने अपने अंदर ही अपना पार्ट प्रत्यक्ष होता है। किस आधार पर? ज्ञान और योग के द्वारा। जो ईश्वरीय ज्ञान हमको मिलता है, हे ज्ञान धन अर्जन करने वाले अर्जुन, नंबर वार, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बताओ कौन बताता है? अरे बेहद के बाप दो हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। वसुधैव कुटुंबकम को याद करो, जब सारी वसुधा एक ही परिवार एक बाप का बच्चा थी, तो परिवार में जो भी भांति होते हैं, माता हो, बड़ा भाई, मझला भाई, छोटे भाई, बहने हो, परिवार के सभी भांतियों के बारे में, जन्म रूपी प्रत्यक्षता के बारे में बाप को मालूमात होती है पहले पहले, या कोई दूसरे भांति को ज्यादा मालूमात होती है? बाप को मालूमात होती है। तो इस मनुष्य सृष्टि का बाप है। जब वो पुरुषार्थ करते करते, याद का पुरुषार्थ, याद माने योग माने आत्मा का किसके साथ योग? सुप्रीम सोल गॉड फादर के साथ योग। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझ, ज्योति बिंदु बाप के साथ मन बुद्धि से बैठना कि शरीर से बैठना, मन बुद्धि से बैठना, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कहते हैं उपासना। उप माने नजदीक, आसन माने आसन मार करके बैठे, उसको कहते हैं उपासना। तो आत्मा देह का बांध छोड़ करके, देह के पदार्थों को भूल करके, देह के संबंधियों को भूल करके, देह के जीवन में जो संपर्क में आने वाले हैं उनको भी भूल करके, अपना सारा समय उपासना में लगाए, जीवन में कमाया हुआ सारा धन जिसे टटपुंजिया धन कहें, ईश्वरीय कार्य में लगाए, जिसका फाउंडेशन ही ईश्वरीय ज्ञान में, आदि से ही ऐसा पक्का फाउंडेशन होगा, उसके पुरुषार्थ की बिल्डिंग भी उतनी ही मजबूत होगी या कमजोर होगी?
मजबूत होगी।
तो शास्त्रों में लिख दिया है तन धन धाम सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी। तन में जो ममत्व लगा हुआ है, धन में जो ममत्व लगा हुआ है, धाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, मकान बनाया हुआ है, झोपड़ी बनाई हुई है, उसमें जो लगाव लग जाता है, उस लगाव को भी और सुहृद हृदय में जो बसे हुए परिवार के संबंधी हैं, संपर्की हैं, उनका ममत्व भी खींच करके एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ज्ञान में आने के फाउंडेशन से ही लालना के पांव कहां देखे जा सकते हैं है? लालना के पांव पालना में ही देखे जा सकते हैं। मतलब आठ की लिस्ट में आने वाले जो विश्व में आठ दिगपाल, दिगमानित दिशाएं, आठों दिशाओं के जो मुखिया गाए हुए हैं, जिन्हें नंबर वार विश्व की बात चाहिए टाइम टू टाइम प्राप्त होती है, जिन्हें शिव की अष्टमूर्तियां कहा जाता है, आठ के मणकों के रूप में शिव के मस्तक पर रखे हुए दिखाई जाते हैं, उन आत्माओं का वो फाउंडेशन के पीरियड में जो उन्होंने पुरुषार्थ की दौड़ दिखाई है वो देखने से पता लगेगा कि वो आत्माएं जब से एडवांस में आती हैं और बाप को पहचानती हैं उसी क्षण से तन धन धाम सुहृद परिवार समय संपर्क लौकिक संबंधियों में उनकी ताकत नहीं लगाएंगे या नहीं लगाई होगी। उन्होंने सारी ताकत कहां लगा दी है? ईश्वरीय कार्य में लगा दी। जो बाप का धंधा है सो बच्चे का धंधा, नहीं तो बाप चक्रवर्ती राजा हो और बच्चा चौराहे पे बैठ करके चप्पल और जूते गूंथने लगे तो कोई कहेगा ये बाप का बच्चा है? ऐसे बच्चों का पुरुषार्थ ज्ञान का हो, योग का हो, धारणा का हो, सेवा का हो, पुरुषार्थ ही जीवन के अंत में संपूर्ण विजय दिलाई देता है। इसलिए वो अष्टदेव के रूप में पूजे जाते हैं। कौन से वंश में आने वाले? सूर्य वंश में आने वाले मणके। पक्का पुरुषार्थ करने वाले मणके जो धर्मराज के सामने कोई भी सजा नहीं खाते हैं। जिनके द्वारा ऐसी प्योरिटी की यूनिटी वाला संगठन तैयार होता है जिसे माला रूपी संगठन कहो, अव्वल नंबर वाला माला जो नई से नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने का निमित्त बनता है, छोटी सी राजधानी, जिसमें राजा भी हो रानी भी हो, राज्य चलाने वाले सहयोगी भी हो, राज घराने के दास दासी भी हो, और उनके नीचे रहने वाले प्रजा वर्ग भी हो, ऐसी राजधानी की बीज रूप आत्माओं का संगठन तैयार होता है। जो आत्माएं षष्ठी के पहले जन्म से लेकर चौरासीवें जन्म तक, 83वें जन्म तक कहो, इस सृष्टि पर चैतन्य रूप में ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाले के साथ ही साथ रहती, सहयोगी बन करके, सिर्फ आखिर में उनको माया अपने अंडर में ले लेती है, क्योंकि ये नियम है, माया किसी को छोड़ती नहीं है। माया बाप की बड़ी बेटी है, परंतु बाप की पहली रचना तो नहीं है, है, है? नहीं, बाप की पहली रचना है माया या नहीं? नहीं, पहली रचना कौन होती है? पहली रचना पत्नी होती है बाप की। बाप है जगत पिता, इस मनुष्य शक्ति में प्रैक्टिकल रूप में, और माता है जगत माता। तो पावरफुल बेटी होगी बड़ी या माता पावरफुल होगी? हैं? माता पावरफुल होती, उसका नाम ये है कैसी कृति, कृति माने रचना, कैसी रचना,
कष्ट रचना,
प्र माने प्रकष्ट रूप से जिसकी रचना की गई है, मना साधारण रूप से रचना नहीं की गई है। तो जगत पिता ने एड़ी से लेकर चोटी तक की ताकत लगाकर चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं या नहीं है? उन सभी प्रबल इंद्रियों की ताकत लगाकर और उन इंद्रियों में भी जो इंद्रियों की प्रधान इंद्रिय है मन, उसकी भी ताकत लगाकर उस प्रकृति की रचना की है। जो इतनी पावरफुल बन जाती है कि माया जो ड्रामा के आधे हिस्से पर राज्य करती है, वो माया बाप के रुद्रमाला के बच्चों से हार खा लेती है। तंग आ जाती है, जो अव्यक्त वाणी में बोला माया तंग आ चुकी है, और माया के उस प्रैक्टिकल रूप ने बाद में शरीर भी छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद कौन सा शरीर धारण करती है? है सूक्ष्म शरीर धारण करती है। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत या स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत? सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मन बुद्धि रहती है जो बड़ी प्रबल होती है। वो अपनी मन बुद्धि से ऐसा रास्ता ढूंढ निकालती है कि वो रास्ता अपनाने के बाद उसकी विजय निश्चित हो जाती है। वो जानती है माया बाप की बड़ी बेटी जानती है क्या कि मेरी सजीवी ज्यादा पावरफुल मेरी माँ है, बाप की प्रकृष्ट रचना, उससे हाथ मिलाई लेती है और प्रकृति जड़त्व में ही बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? वो माया के इस राज को नहीं पहचान पाती और माया से पक्का पक्का हाथ मिलाई लेती है बुद्ध रूपी। तो माया तो पहले ही पावरफुल थी आधा कल्प से, बाप के बच्चों को कंट्रोल में लेकर के और अभी और ज्यादा पावरफुल बन गई। क्योंकि तो माया जानती है कि मैं तो इन बच्चों को धराशायी नहीं कर सकी, जो बाप के डायरेक्ट बच्चे रुद्रमाला के मणके हैं, साक्षात रुद्र के बच्चे हैं, वो रुद्र है जो महामृत्यु के समय रौद्र रूप धारण करता है। जिसके रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है, तो प्रकृति की जड़ बुद्धि का फायदा उठाती है।
जिस प्रकृति माता कहो जगदम्बा कहो उसके लिए वाणी में बोल दिया। ऐसे बच्चे भी हैं मेरे रुद्रमाला के जो जीवन भर भी अगर बाप के साथ रहे फिर भी बाप को भूल जाते। जीवन भर बाप के साथ बैठे उपासना की संग किया संग का रंग लगता है या नहीं लगता है तो बहुत पावरफुल हो जाती है। फिर भी बुद्धि की कमी होने के कारण क्योंकि बुद्धिमान नरार्जुन कहा जाता है बुद्धिमान नारी नहीं कही जाती। क्यों? क्योंकि देवान स्त्री चोले में ज्यादा होता है या पुरुषों में ज्यादा देवान होता है? पुरुष संन्यास लेकर के नागा बाबा भी बन जाते हैं। लेकिन स्त्रियां तो ये कार्य नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? उनमें शरीर का ओना रहता है। ये प्रवृत्ति कहाँ से शुरू होती है? दुनिया में जो भी परंपराएं शुरू होती हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? है? संगम युग में शिव बाप जब आते हैं तो कौन से रथ का आधार लेते हैं? क्या नाम देते हैं? अरे अभी अभी बताया भूल गए। अरे सुप्रीम सोल बाप गॉड फादर बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं तो कौन से पार्टधारी आत्मा को याद करके आते हैं? जो बोला मुरली में मैं आशिक बन करके आता हूँ आशिक पुरुष बनता है या स्त्री बनती है? पुरुष आशिक बनता है और किस पर आशिक होता है? है आत्मा तो, लेकिन आत्मा स्त्री और पुरुष दोनों का पार्ट बजाती है। इसका आधार लेता हूँ जिसको देवान छूटता ही नहीं। किसका आधार लेता हूँ जिसका देवान छूटता ही नहीं? सारी देह और देह की इंद्रियों का भान छूट गए लेकिन लिंग का भान छूटता ही नहीं। तो लिंग रूप जो है वो पांच तत्वों का पुतला है या नहीं है? पांच तत्वों का जो दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वो लिंग है, जो देश विदेश की खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में मिला है लिंग मूर्तियां, क्योंकि वो परम पुरुष जिसे चोले का आधार लेता है उसका नाम रखता है परम ब्रह्म, परम माने बड़ी और ब्रह्म माने ब्रह्म, बड़े से बड़ी माँ। वो परम ब्रह्म में क्या देख करके आता है? सच्चाई। सत्य तो आत्मा को कहा जाता है, और जो आत्म की स्थिति में स्थित है वो ही तो सच्चा है। अगर देह बहाना है कुछ न कुछ तो कुछ न कुछ झूठा है या नहीं है? झूठा है। लेकिन वो आत्मा तो ऐसा पात्रधारी है कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर महामृत्यु के समय भी, प्रलय काल तक भी वो उस अंग का भान नहीं छोड़ पाता, माना देह भान में रहता है या नहीं रहता है? रहता है। इसलिए बोला इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, धर्म की धारणाएं हैं, उन धारणाओं के आधार पर जो कर्म हर धर्म में माने गए हैं, जैसे मुसलमानों में जलाते नहीं है गाड़ते हैं और हिंदुओं में जलाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जो कर्म क्षेत्र हैं, धर्म क्षेत्र हैं, उनका बीज कौन है? उनका बीज ये क्षेत्र है। क्षेत्र माने जहां युद्ध क्षेत्र बने दुनिया का सबसे बड़ा, उस युद्ध क्षेत्र का, उस बड़े से बड़े महान क्षेत्र युद्ध का नाम क्या है? अरे भूल गए, अरे सामने खड़ा है महाभारी महाभारत गृह युद्ध। ग्रह मकान को, दीवारों को नहीं कहा जाता, न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते, ग्रहणी ग्रहम उच्यते। घर किसको कहा जाता है? घरवाली को ही घर कहा जाता है। तो जो परम पुरुष है, परम पिता है, उसकी चुनी हुई पहली पहली घरवाली कौन हुई? परम ब्रह्म। वो घरवाली में देहभान होगा या नहीं होगा? वो मनुष्यात्माओं का बीज रूप बाप है। परिवार में बाप सबसे जास्ती शक्तिशाली होता है, माता या बच्चे नहीं। कैसा बाप? मनुष्य सृष्टि में देवताएं भी हैं, मनुष्य भी हैं, राक्षस भी हैं, पशु पक्षी कीटा तो है ही है बाद में। तो मनुष्यों के बीच में माता के रूप में जो परम ब्रह्म का पार्टधारी है, वो ऊंचे ऊंचे देवताओं का भी बाप और नीचे नीचे पार्ट बजाने वाले मनुष्य जिन्हें राक्षस कहा जाता है उनका भी बाप। देवताओं में देवान होता है?
नहीं।
आत्माभिमानी होते उनका भी बाप। और राक्षसों में देवान प्रबल होता है, आत्माभिमानी बनते ही नहीं। इंद्रियों से ही हिंसा करते रहते हैं, इसलिए वो मनुष्य सृष्टि का बाप मनुष्य सृष्टि के आदमी आत्माभिमानियों का बाप देवताओं का बाप। और जब तमो प्रधान बनता है तो कलयुग के अंतिम क्षणों में जब 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का 5-7 रोज के अंदर चतुर्थ विश्व युद्ध में विनाश होता है तो जो बड़े से बड़े देह अभिमानी हैं, इस मनुष्य शक्ति में अंत में उतरते हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह दुखदाई, उनका भी बाप बनकर प्रत्यक्ष होता है। जो राक्षस हैं वो सृष्टि बढ़ाने के लिए कौन सी इंद्रिय का विशेष प्रयोग करते हैं? लिंग का प्रयोग करते हैं और राक्षसी रूप में प्रयोग करते हैं। जानवरों की तो बात ही छोड़ दो, बाबा तो कहते हैं मनुष्य जानवरों से भी बदतर हो गया। यहां तक कि बोल दिया आज की दुनिया में, सत्युग त्रेता की बात नहीं, आज की दुनिया में सब पुरुष क्या है? दुर्योधन दुर्यास दुशासन, दुह माने दुष्ट, योधन माने युद्ध करने वाले, इंद्रियों से दुष्ट युद्ध करते हैं, प्यार का नहीं। जैसे अखाड़े में कुश्ती सिखलाने वाला जो उस्ताद होता है वो प्यार से सिखलाता है, प्यार से युद्ध करता है, या क्रोध में आकर के दुख करता है युद्ध करता है? है जानवरों की तरह युद्ध करता है क्या? नहीं करता ना। और ये राक्षस क्या करते हैं, इन राक्षसों की संस्कृति ही ऐसी है द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से, जहां स्त्रियों को दास दासी बनाई दिया जाता और पुरुष शासनकर्ता बन करके बैठते हैं। पहला द्वैतवाद यहां से शुरू होता है, नहीं तो सत्युग त्रेता में देवताएं स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं करते थे, वो भी आत्मिक स्थिति में और वो भी आत्मिक स्थिति में। तो ये राक्षसी संस्कृति में, राक्षसी सभ्यता में मुखियाओं का तो नाम मालूम ही है, कौन कौन हिस्ट्री में मुखिया हुए भूल गए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। ये देवान को बढ़ाने वाले धर्म पिताएं हुए या आत्माभिमानी बनना सिखाया, इन धर्म पिताओं ने भी आकर के अपनी धर्म रूपी धारणाओं को सिखाया है, धर्म की स्थापना की है लेकिन राजाई की स्थापना नहीं की। इनमें भी राजाई की स्थापना कराने के लिए जिस मनुष्य सृष्टि के बाप ने सुप्रीम सोल गॉड फादर से सहज राज योग सीखा था और अब्बल नंबर में सीखा था, वो ही मनुष्य शक्ति का बाप द्वैतवादी युग में इन द्वैतवादियों का भी बाप बन करके आता है। कोई कहे हम नहीं मानते, हिस्ट्री को तो मानेंगे, हिस्ट्री में ऐसे ऐसे हुए हैं जो विदर्भी आक्रांताएं विश्व की बादशाही लेने के आकांक्षा वाले बड़ी बड़ी लाखों की सेना लेकर के भारत में आए और आक्रमण किए हिंसा के आधार पर, देवहन के आधार पर। उनको भी पता चल जाना चाहिए था उसी समय कि दुनिया में जो हिंसक राक्षस हैं, कोई भी बड़े के बड़े हिस्ट्री में उनको भी मात देने वाला कौन से देश में बैठा हुआ है, है? भारत देश। भारत देश में ऐसे ऐसे राजाएं हुए जिन्होंने आदि से ही, द्वापर के आदि से, द्वैतवादी युग के आदि से ही अलेक्जेंडर जैसे महापराक्रमी को हार खिला दी, पूंछ दबा के भाग खड़े हुए। उसके बाद दुनिया में बहुत ऐसे ऐसे आक्रामक आए भारत में, जिनको हिस्ट्री में भारत के राजाओं ने धूल चटा दी। चाहे अकबर महान जैसा टाइटल लेने वाले क्यों न हो, वो भी नाक लटका लटका के गए या सर ऊंचा करके गए? ऐसे ही युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, साहित्य के क्षेत्र में भी जो साहित्य को लिखने वाले मनीषी सारे जन समुदाय की बुद्धि को मोड़ देते हैं, उन साहित्यकारों के बीच में व्यास बन करके वही मनुष्य शक्ति का बाप प्रत्यक्ष होता है, जो वेद व्यास कहा जाता है, जिसकी गद्दी विद्वान आचार्यों में आज तक भी प्रसिद्ध है, व्यास गद्दी। जिस व्यास ने वेदों की व्याख्याएं लिखी आरण्यकों के रूप में, शतपथ ब्राह्मण के रूप में, उपनिषदों के रूप में, और बाद में पुराणों के रूप में। बड़े से बड़ा पुराण कौन सा है? है महाभारी, महाभारत युद्ध जिसके नाम पर रचा गया, महाभारत पुराण। एक ही पुराण इतना बड़ा है कि एक बड़ा हाल और उसकी सारी अलमारियां उसे एक ग्रंथ से ही भर जाती है। और भागवत आदि वो भी महापुराण की संज्ञा में। उसी तरह द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखी गई, जो बोला है मुरली में अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा लिख दी है, अपने अपने जीवन की कथा कहानियां लिख दी हैं। तो बताओ वाल्मीकि रामायण किसने लिखी है? है? अरे हाँ जी, वही राम वाली आत्मा जिसके नाम से ग्रंथ का नाम पड़ता है राम आयन, जैसे नारायण राम की जीवन कहानी का घर, द्वापर में वाल्मीकि रामायण और कलयुग के मध्यांत में तुलसीकृत रामायण किसने लिखी है? वही राम वाली आत्मा जो बाबा ने भी मुरली में इशारा दे दिया, तुलसीदास चंदन घिसे विश्व की बादशाही का तिलक देत रघुवीर। तो साहित्य के क्षेत्र में भी वो ही आत्मा हीरो पाठधारी का पाठ बजाती है। और जितने भी क्षेत्र हैं जिनको लेकर के युद्ध छिड़ते रहे हैं और महाभारी महाभारत युद्ध भी होने वाला है, उन सब युद्धों का मूल कौन है? जो बड़े से बड़ा युद्ध लड़ता है और प्रत्येक युद्ध में उसकी विजय होती है। जैसा शास्त्रों में लिखा है, इस दुनिया में एक ही आत्मा है जिसने कभी भी युद्धों में हार नहीं खाई। कौन? नारायण। वो नारायण वाली आत्मा जिसके बारे में बोला सुप्रीम सोल बाप ने कि तुम अपने पूरे 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूं। तो 84 जन्मों को बताता है, वो बताता है ऊंचे ऊंचे भगवंत, ऊंचे ऊंचा बाप बताता है या वो आत्मा जो प्रैक्टिकल में 84 जन्म धारण करती है, वो अपने जन्मों की हिस्ट्री अपने मुख से बताती है। हाँ, तो बाप तो पहले ही बता दिया कि अपनी अपनी कथा कहानी अपने ग्रंथों में लिख दिए है। बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। परम पिताएं ग्रेट फादर्स जरूर हैं, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं है। उन धर्म पिताओं को अभी कोई बाप है जो ग्रैंड फादर कहा जाता है, बाबा कहा जाता है, जिसको मुरली में साकार और निराकार का मेल कहा है। निराकार का मेल? अरे निराकार तो सभी आत्माएं हैं और सभी मनुष्य आत्माएं साकार हैं, तो सब बाबा जी बाबा जी बाबा जी हैं क्या? है क्या मतलब है? वो तो आती हैं, शिव बाबा नहीं जन्मना के चक्कर में आता है, वो नहीं आता है। शिव बाबा जन्मन के चक्र में आता है या नहीं आता है? वो भी तो आता है। शिव बाप नहीं आता, वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, ग्रैंड फादर अर्थात बाबा नहीं है। बाबा चाचा मामा काका ताऊ बच्चा बच्ची, ये संबंध जब वो साकार में आता है तब बनते हैं, जब निराकार है तो कोई संबंध किसी से नहीं। क्या संबंध है? सिर्फ एक संबंध, मैं आत्मा और ये सब आत्मा रूपी बच्चे भाई भाई। वो बाबा नहीं है। तो जो शिव बाबा है इस मनुष्य सृष्टि का, प्रैक्टिकल में ग्रैंडफादर, वो ग्रैंडफादर का वर्षा बच्चों को जरूर मिलता है या फादर का वर्षा जरूर मिलता है? फादर अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा हर बच्चे को जरूर मिलता है। तो बताओ वो ग्रैंडफादर कौन है जो 500-700 करोड़ मनुष्यों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा, कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर देकर जाता है? जिसके पास धन का वर्षा, जमीन जायदाद का वर्षा, जिस बाप के पास खुद ही न हो, वो बच्चों को वर्षा दे सकता है? है? नहीं दे सकता। तो शिव बाप के पास कौन सा वर्षा है? है? ज्ञान का वर्षा है। इसीलिए गीता में लिखा है, नहि ज्ञान सदृशं पवित्रम इह विद्यते। यह माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कोई भी चीज नहीं है। और ज्ञान से दुनिया के सारे काम होते हैं। ज्ञान की प्योरिटी असली प्योरिटी है। ज्ञान को ही सत्य कहा जाता है। सत्य को ही ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है और गॉड इज वन कहा जाता है। गॉड एक है या अनेक? एक। सत्य सदाकाल है या अल्पकाल है? और असत्य अल्पकाल का है। भारत सत्य खंड है, अविनाशी खंड है। और दुनिया के जितने भी देश हैं, बौद्ध धर्म खंड हो चीन जापान, इस्लामी धर्म खंड हो अरब देश अफ्रीका आदि, क्रिश्चियन धर्म खंड हो यूरोप अमेरिका आदि, ये सभी धर्म खंड 2500 वर्ष पहले इस सृष्टि पर थे ही नहीं। समंदर के गर्त में समाये हुए थे। और हिस्ट्री भी यही बात साबित करती है कि कोलंबस ने 500 साल पहले अमेरिका की इजाद दी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल में ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान ही नहीं था। ऐसे ही जितने भी विधर्मी खंड हैं, विदेशी धर्म खंड, वो सब विनाशी हैं, असत्य हैं। असत्य बातों को संसार में फैलाने वाले हैं। असत्य का झंडा बुलंद करने वाले हैं। सत्य ज्ञान को कहा जाता है, असत्य अज्ञान को कहा जाता है। अज्ञान से दुनिया नीचे गिरती है और ज्ञान से दुनिया सुखी समृद्ध बनती है। वो सत्य ज्ञान अविनाशी भारत खंड में है। वो भारत खंड जिसमें प्रैक्टिकल में बा माने ज्ञान की रोशनी में सदा लगा रहने वाला, भारत जो भगवान का जन्म भूमि है। भूमि माने धरणी माता असली ऊंचे से ऊंचा भगवंत है वो भारत भूमि में आता है। जड़ भूमि में आता है या चैतन्य भूमि में आता है? चैतन्य भूमि है। ऐसी चैतन्य भूमि है जिसमें पांच तत्वों का संघात लिंग रूप साकार इस शक्ति रूपी रंगमंच पर सदैव विद्यमान रहता है। कभी नष्ट नहीं होता। बुलिंग बड़ा रूप भी जो शरीर की यादगार है वो नष्ट ही नहीं होता। सवाल है उसको हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां क्यों नहीं दिखाई गई? लिंग में दिखाते हैं, इसलिए गीता में कहा है अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त है। अव्यक्त माने जो इन आंखों से देखने योग्य नहीं है। क्या नहीं देखने योग्य? लिंग तो हम देखते हैं। उस लिंग में उस साकार रूप में हम इंद्रियों को नहीं देखते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि उसको इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां तो हैं, लेकिन वो मन बुद्धि रूपी आत्मा एक शिव बाप दूसरा ना कोई उस याद में ऐसी समा जाती है कि तू मुझ में समा जाए मैं तुझ में समा जाऊं। और कुछ भी याद न रहे। जब ऐसी स्टेज हो जाती है उस ऊंचे से ऊंचे भगवंत के पास पहुंचने की जो बाप कहते हैं आत्माओं का, ये तुम बच्चों की याद की रेस है। इस रेस में नंबरवार बच्चे दौड़ने वाले हैं या सब एक साथ मेरे पास आ जाएंगे? हैं? नंबरवार हैं। जो अव्वल नंबर में दौड़ के मेरे पास आएगा मन बुद्धि रूपी आत्मा से वो मेरा बड़ा बच्चा। वो संसार को दिखाना है, बाकी वो तो पहले से ही जानता है त्रिकालदर्शी होने के कारण। इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर मेरा बड़ा बच्चा कौन सी मनुष्य आत्मा है जानता है या नहीं जानता है? जानता है। इसलिए कहता है कि जब टाइम होता है तो मुझे तलक हो जाती है, मैं बरबस आशिक बन जाता हूं। तू माशूक है मेरा अब्बल नंबर का। अब्बल नंबर का क्यों कहा? क्या द्वयम तेम नंबर के भी कोई माशूक है या नहीं है? हैं। अगर नहीं है तो क्यों कहता कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं? तो पहले पहले जिसने प्रवेश किया वो पहली मां, कोई दूसरी माँ भी है, कोई तीसरी माँ भी है, चौथी भी है, पांचवी भी है। पांच ब्रह्म है तो विष्णु के भी चार भुजाएं हैं और उनको चलाने वाला कोई है पांचवा। तो भुजाएं तो जड़ होती हैं, अपने आप नहीं चलती, उनको चलाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है। तो पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, चार मुख वाला ब्रह्मा गाया हुआ है, चतुर्मुखी ब्रह्मा जो ब्रह्मा सो विष्णु देखने में आता है, वो चार भुजाएं तो सबको देखने में आती है, लेकिन वो ब्रह्मा कौन सा है जो पांचवा मुख है, वो किसी को देखने में नहीं आता, क्योंकि वो ऐसी आत्मा है जो महामृत्यु के समय भी, प्रलय काल में भी, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त रहती है। कैसे अव्यक्त? उसकी इंद्रियां हैं, फिर भी इंद्रियों को, इंद्रियों के रस को, इंद्रियों की प्राप्ति को महसूस ही नहीं करता। इंद्रियों को याद ही नहीं करता। किसको याद करता है? है अपन को, आत्मा को याद करता, आत्मा के बाप को याद करता, इसलिए बाप समान बन जाता है। जैसे बाप निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऐसे वो आत्मा भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हो जाती है। इस मनुष्य सृष्टि में सदाकाल वो एक ही सत्य है, सत्य, और सब असत्य हैं। नंबर वार जो एक सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता, सारी दुनिया का विनाश होगा, जड़ पदार्थों का या जंगम चैतन्य का विनाश होगा। चैतन्य और जड़ जो भी पदार्थ हैं दुनिया के, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, सब का विनाश होगा, लेकिन उसे एक का विनाश नहीं होता। इसलिए गाया गया है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, उसको काल के गाल में जाता हुआ कोई देखता है? देखता है? देखता ही नहीं। उससे पहले ही सब काल के गाल में चले जाते हैं। वो सब को खा जाता है, उसको कोई भी खा नहीं सकता। तो जो सदा काल रहने वाला है, हाँ जी, कौन बोला? जो सदा काल रहने वाला है इस मनुष्य सृष्टि में, उसके लिए मुरली ने कुछ बोला? क्या बोला? अरे सब भूल गए हैं। इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज नहीं है, कोई चीज चाहे जड़ हो और चाहे जगजम हो, चैतन्य हो, इस सृष्टि पर सदाकाल कायम कोई चीज नहीं है। सदाकाल कायम एक शिव बाबा ही है। तो इस सृष्टि पर सदा सत्य कौन है? है शिव बाबा। इसलिए जब पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस संपन्न रूप को सदा शिव के रूप में बताया जाता है। कैसा नेत्र? सदा शिव नेत्र। मना वो आत्मा की इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी अभाव नहीं होता और सभी आत्माएं कुछ न कुछ समय के लिए इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़कर आत्मलोक में चली जाती है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच को खाली कर जाती है या नहीं? खाली कर जाती है। एक ही बचता है जिसके लिए गीता में कहा है, उस अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति में से सारा संसार उत्पन्न होता है। विसृजामि नंबर वार जड़ और जंगम सबको छोड़ता हूँ। सृष्टि के आदिकाल से ही छोड़ना शुरू हो जाता। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम में शूटिंग होती है। जो शास्त्रकारों ने लिख दिया, खास करके शंकराचार्य ने लिखा कि आत्माएं सागर के बलबूले के समान छोटी बड़ी हैं। जैसे सागर में बलबूले निकलते हैं और सागर में ही समा जाते हैं, ऐसे हम सब मनुष्य आत्माएं इस सत्य रूपी रंगमंच पर बलबूले के समान आते हैं, जिन्हें बुदबुदा कहा जाता है। हर एक बुदबुदा रूपी आत्मा के अंदर अपना अपना अलग अलग संकल्प चलता है कि सबके अंदर एक ही संकल्प चलता है, सबके अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं। ये बुदबुदे बुदबुदा आते रहते हैं अंदर अंदर। वो बुदबुदे विनाशी हैं। आज सागर से निकलते हैं, कल सागर में समा जाते हैं। तो कौन है सागर? कौन है बुदबुदे? है कौन है सूर्य? कौन है सितारे? कौन है दिन के सितारे? कौन है रात के सितारे? सूर्य है ऊंचे से ऊंचा भगवंत शिव, जो ज्ञान धन की ऊंचे से ऊंची प्रॉपर्टी आकर देता है अपने बड़े बच्चे को, जो परंपरा आज तक भी हिस्ट्री में चली आ रही है। कोई भी बाप अपने कौन से बच्चे को प्रॉपर्टी देता है? मोस्टली बड़े बच्चे को देता है। इसलिए गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैंने जो रास्ता चुना है उसी रास्ते पर सब चलते हैं। जैसे मैं इस सत्य रूपी रंगमंच पर आकर परम पुरुष के रूप में परम ब्रह्म को चुनता हूँ, चुनता है या नहीं? ऐसे सत्य रूपी रंगमंच पर ब्रॉड ड्रामा में भी हर मनुष्य आत्मा कोई न कोई पहली माता को चुनता है। चुनता है या नहीं चुनता है? हैं? और अपने जीवन की ऊंचे से ऊंची कमाई जिसे सत्य कहा जाता है, सत्य जिससे सती बनती है, सत्य अर्थात वीर की शक्ति, वो वीर की शक्ति पहली माता में जीवन भर की अर्पण करता है, तो वो बड़ी माता कही जाती है। उस बड़ी माता से जो बच्चा पैदा होता है वो जेठौत कहा जाता है, ज्येष्ठ पुत्र है, जिसको राजाई का वर्षा मिलता रहा। बाकी बाद में जो माताएं आती हैं, जैसे मिसाल दिया वाणी में, भारत में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी लेता हूं। ऐसे दूसरी तीसरी चौथी पांच बीवी ले लेते हैं। तो ये परंपरा कहां से चली है? कहां से चली? संगम युग से। सुप्रीम सोल बाप ने आकर की ये परंपरा डाली भारतवासियों। पंचमुखी ब्रह्मा कहे जाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। तो बताया कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए और उन्हें पूरे 84 जन्म नहीं लिए हैं, और मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच को खाली करके कहां चली जाती है? है? आत्मलोक में चली जाती है। तुम इस सृष्टि रूपी रंगमंच को कभी खाली नहीं छोड़ते हो, इसलिए तुम ही इस मनुष्य सृष्टि के बीज हो। मनुष्य सृष्टि में जड़ और जंगम दो प्रकार के ही पदार्थ हैं। जड़ जंगम माने चैतन्य, चैतन्य आत्मा है, और जड़ तुम्हारी आत्मा है, और जड़ पदार्थ ये दोनों का बीज तेरे अंदर है, जो तेरी सत्व प्रधान यादगार द्वापर के आदि काल में, द्वापर के सत्व प्रधान समय में, कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई तेरी यादगार है। मेरी यादगार नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही बता चुका हूं मैं न पूज्य बनता हूं ना पुजारी बनता हूँ। जो मंदिरों में शिवलिंग दिखाया जाता है वो तेरी यादगार है। जिस शिवलिंग में साकार और निराकार आत्मा जो सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में दिखाई गई, दोनों का यादगार है। आत्मा शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकती और शरीर आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे नहीं है कि वो शिवलिंग कुछ नहीं करता, वो सदाकाल करता है। नहीं, ये शिवलिंग संपन्न स्टेज का यादगार है। जिस स्टेज को धारण करने पर वो आत्मा शरीर की इंद्रियों से कुछ नहीं करती, करते हुए भी कुछ नहीं करती। ऐसे नहीं, वो इंद्रियां नहीं, क्योंकि मेरे तो लिंग का ही यादगार है, लिंग की ही पूजा होती है। ऐसे नहीं कि वो लिंग कुछ करता नहीं, करता तो है लेकिन करने वाली आत्मा है या शरीर है? हैं? आत्मा करती है, लेकिन आत्मा क्या करती है? है आत्मा जो करती है वो वाइब्रेशन का काम करती है या इंद्रियों का स्थूल काम करती है? वाइब्रेशन का काम करती है। तो ये जो वाइब्रेशन की शक्ति है, मनसा पावर, वो मनसा सृष्टि की रचना करता हूँ। जैसे संपूर्ण ब्रह्मा ने पहले पहले मानसी सृष्टि रची चार पुत्रों की, क्या नाम? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये चारों धर्मों का बीज डाल दिया। ऐसे ब्राह्मणों की रचना करता हूँ। वो ब्राह्मण, ब्राह्मण जीवन में जो पुरुषार्थ करते हैं, इंद्रियों की संपन्न स्टेज में कभी पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते? हैं? पहुंचते हैं। जब इंद्रियों की संपन्न स्टेज में पहुंचते हैं तो नंबर वार हैं या एक जैसे हैं? नंबर वार हैं, क्योंकि नंबर वार ही सूर्य ज्ञान को धारण करते हैं। संपूर्ण ज्ञान को धारण नहीं करते। तो ये मानसी सृष्टि रचता हूं ऐसी संपन्न स्टेज में, संपूर्ण ब्राह्मण रचता हूं या अधूरे ब्राह्मणों की रचना करता हूं? है संपूर्ण ब्राह्मणों की रचना करता। जब तू संपूर्ण बनता है तब करता हूं या मैं पहले ही करता हूं? हैं? हाँ, जब एक संपन्न बनता है मानसी सृष्टि रचने में, कैसी मानसी सृष्टि? वाइब्रेशन की सृष्टि। जैसे सतयुग में दिखाया, राधा कृष्ण एक दूसरे को दृष्टि से प्यार दे रहे हैं, वो ज्ञान इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रिय जो आंख, वो आंख के द्वारा सृष्टि रची जा रही, वो इंद्रिय देह का अंग है या नहीं? देह का अंग है तो देह पतन की ओर ले जाएगी, नीचे ले जाएगी आत्मा को, या ऊपर ले जाएगी? तो 16 कला संपूर्ण से वो राधा कृष्ण की पहली पीढ़ी उतरती कला में जाती है या चढ़ती कला में जाती है? उतरती कला में जाती है, क्योंकि देह का अंग जो इंद्रियां हैं, भले ज्ञान इंद्रियां, भले ज्ञान इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय आंख है, तो भी नीचे गिरते हैं, कलाएं कम होती जाती हैं या बढ़ती हैं? कम होती जाती है। लेकिन उस कृष्ण रूपी पहले पत्ते को जन्म देने वाला जो बाप है, वो इंद्रियों का उपयोग करता है या नहीं करता है? इंद्रियों का उपयोग नहीं करता है, इसलिए लिंग को इंद्रियां दिखाई नहीं जाती। ऐसी स्मृति की स्टेज दिखाई गई है, जिस स्टेज में इंद्रियों की स्मृति है ही नहीं, इंद्रियों का रस लेता ही नहीं। ऐसे नहीं, इंद्रियों से कार्य व्यवहार नहीं करता है सन्यासियों की तरह। कार्य व्यवहार करते हुए दिखाया है या नहीं दिखाया है? है? दिखाया है, लेकिन मन बुद्धि से उन इंद्रियों का रस स्वीकार नहीं करता। ऐसी संपन्न स्टेज वाइब्रेशन की सृष्टि बनाती है, 100% वाइब्रेशन, जिससे संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, नंबरवार बनते हैं। क्या? इसलिए 9 लाख सितारे गाए जाते हैं, 10 लाख नहीं, 8 लाख नहीं, कितने? 9 लाख। कितने धर्म हैं? 9 मुख्य धर्म हैं जो आस्तिक माने जाते हैं, बाप से वर्षा लेने वाले, कंट्रोलिंग पावर का 9 ग्रह हैं। जो मुख्य माने जाते हैं, और उन 9 के आधार पर 9 रत्नों की यादगार बनती है। वो 9 रत्न पत्थर हैं या पारस हैं? है? क्या है? पत्थर है। उन 9 में से 1 के लिए गायन है। क्या? कि वो संपन्न स्टेज जब पुरुषार्थ धारण करता है तो पत्थर से क्या बन जाता है? पारसनाथ बन जाता है। पारस का अर्थ क्या है? पारस शब्द बनता है स्पर्श से। क्या? स्पर्श, स्पर्श मात्र से परिवर्तन कर देता है, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो। उस संपन्न स्टेज में जो भी उसके संसर्ग संपर्क स्पर्श में आता है वो क्या बन जाता है? है? हाँ, सोना बन जाता है। सोना सतयुग को कहा जाता है, सच्चाई को सोना कहा जाता है। चांदी नहीं बनता, क्या बनता है? सोना। माना सतयुगी आदि सृष्टि में ही, पहले जन्म में ही कितनी आत्माएं होती हैं? जो सोने जैसी बन जाती है, सच्ची 16 कला संपूर्ण, कितनी 9 लाख, उनमें आधी राधा कृष्ण की तरह जन्म लेने वाली और आधी जन्म देने वाली। जो जन्मदाता है वो ही सारी मनुष्य शक्ति के बीज है। क्या आज भी दुनिया में जो मनुष्य शक्ति चल रही है उस मनुष्य शक्ति में देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं और धर्मों की आत्माओं की तरह ऊपर से नीचे आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? आ रही हैं। तो वो आधार मूर्तों में आएंगी या बिना आधार के काम करेंगी? वो आधार मूर्तों में आएंगी, आती हैं। जैसे धर्म पिताएं आधार मूर्तों में आते हैं, जैसे क्राइस्ट जीसस में आता है, लेकिन जीसस को भी जन्म देने वाला उसका कोई बाप होगा या नहीं होगा? है, होता है। तो ऐसे ही है, ये 9 रत्न है जो मनुष्य सृष्टि के प्रधान बीज हैं। उन 9 रत्नों में भी सारे के सारे पत्थर बुद्धि और पुरुषार्थ संपन्न होने पर एक पारस बनता है, जिसके संग के रंग से सारी मनुष्य शक्ति क्या बच जाती है? हैं? अरे पारस के संग से क्या बन जाती है? सोना माने सच्चे बन जाते हैं, सत्युग के आदि में जन्म लेने वाले बन जाते हैं। तो सोमनाथ के मंदिर में जो हीरा दिखाया गया है, दिखाया गया था, वो हीरा किस आत्मा की यादगार है? सुप्रीम सोल आत्मा की यादगार है या सुप्रीम सोल जो आत्माओं का बाप है उसका बाप के बड़े बच्चे की यादगार है? क्यों बाप की यादगार क्यों नहीं?
बाप पत्थर बुद्धि नहीं बनता।
बाप कभी भी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। वो जिसमें प्रवेश करता है वो पहले क्या था? पत्थर बुद्धि था। उसके लिए बोला, मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं, जैसे मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आत्मा हूं, वैसे तुम बच्चों को भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आत्मा बनाता हूं। तो बीज रूप बाप जब मनुष्य सृष्टि के सामने नंबरवार प्रत्यक्ष होता है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो नई दुनिया की राजधानी स्थापन होना शुरू होती है। जो बताया कि मैं जब आता हूं तो 1 सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति दे देता हूं। जनक माने क्या? जन माने जनन, जन्म देने का माने करने वाला, जो सारी मनुष्य शक्ति को जन्म देने वाला है। मनुष्य शक्ति की सभी आत्माएं, तुम 7 सीताएं हो। क्या हो? सीताएं हो। राम बाप एक है, तुम सब सीताएं। वो राम बाप इस मनुष्य सृष्टि के 84 जन्मों में कभी भी रावण के अधीन नहीं होता। सिवाय संगम युग में लास्ट जन्म के, जिसे बोला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। क्या कहा? बहुत जन्म उनके अंत के भी अंत में मैं आता हूं। तो देखो कहां की बात है, है? जो बोला है, कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं कि सब मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा के रूप में पार्टधारी, जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं, नहीं तो तुम बच्चे सूर्यवंशी इस सृष्टि का 3 सुख भोगते हो सामान्य रूप से, और 1 दुख भोगते हो। और धर्म के जो बच्चे हैं वो आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते, उनमें भी नंबरवार हैं, जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं, दुख का वाइब्रेशन उनके अंदर आता ही नहीं है। तो देखो जीवन मुक्त माना क्या, जीवन में रहते रहते सुख अनुभव करें, दुख का अनुभव नहीं करें, वो है जीवन मुक्त का वर्षा। और मुक्ति का वर्षा माने दुखों से मुक्ति का वर्षा, सिर्फ दुखों से मुक्ति का वर्षा मिलता है, सुख का वर्षा नहीं मिलता। वो द्वापर युग से जो भी आत्माएं नीचे आती हैं रंगमंच पर आत्मलोक से, वो सब मुक्ति का वर्षा लेती हैं। क्या? दुखों से आधा कल्प के लिए मुक्त हो जाती है। आधा कल्प के बाद रंगमंच पर आती है तो पहले जन्म में सुख भोगेंगी, दुख नहीं भोगेंगी। क्यों? क्योंकि ये आत्मलोक से आती है, आत्माओं के बाप के घर से आती है, जहां मुक्त आत्माएं रहती हैं, दुख का नाम निशान नहीं है, शांति ही शांति, सुख का नाम निशान भी नहीं है। जब इस सचरूपी रंगमंच पर आते हैं तो सभी मनुष्य आत्माओं को एक जन्म का सुख अर्थात जीवन में रहते रहते सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता। तो ये शूटिंग भी कहाँ होती है? है संगम युग में शूटिंग होती है। संगम युग में जो दूसरे धर्म के धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, वो संगम युग में बाप से राजाई का वर्षा लेते हैं, कौन से बाप से है? मनुष्य सृष्टि के बाप से लेते हैं या आत्माओं के बाप से लेते हैं? है मनुष्य सृष्टि के बाप से लेते हैं, आत्माओं के बाप से उन्हीं को वर्षा मिलता है जो आत्मिक की स्थिति में स्थित होते हैं। चाहे शरीर रहते रहते आत्मिक की स्थिति में स्थित हो जाएं, और चाहे शरीर छोड़ करके किसी में प्रवेश करके रुद्रमाला के मणके में आत्मिक की स्थिति में स्थित हो जाएं, देह बांध त्याग दें, अर्थात ईश्वर बाप की सारी बातों को माने, क्या ऐसे नहीं एक बात माने और दूसरी बात नहीं माने, ये निशानी है किसकी है? दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं उनकी ये निशानी है, क्या ईश्वरीय ज्ञान की मुरली की एक पॉइंट मानेंगे और दूसरे पॉइंट को नहीं मानेंगे, तो समझ लो कौन से धर्म का है? है दूसरे धर्म का है, द्वैतवादी है। एक बाप को फॉलो करने वाला नहीं है। जो एक बाप का बच्चा होगा उसे एक बाप के बच्चे में एक बाप का संकल्पों का खून बहेगा या दूसरे बाप का भी संकल्पों का खून बहेगा? और असंतान उसे कहा जाता है, असली बाप का बच्चा। दूसरे को बाप बनाया होगा तो भी उसकी निशानी है, इसलिए मुरली में डायरेक्शन दिया है एक से सुनना चाहिए, क्या एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जैसे द्वापर युग से भारतवासी ढेर के ढेर देवात्माएं दूसरे दूसरे धर्म पिताओं की बातों में बरगलावे में आते रहे और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, सुनकर के कन्वर्ट हुए या बिना सुने? तो बोला भारतवासियों की ये खासियत है, क्या सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है, तो एक बाप को जानना पहचानना मानना और उसके रास्ते पर चलना और दूसरों को भी चलाना, उसको कहेंगे एक बाप का बच्चा। अगर औरों के प्रभाव में आ गया, औरों की बातें भी सुनता है तो क्या होता है? संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। कान से सुना, मुख की बातों को सुना, दूसरे की मुख की बातों को, तो संग का रंग जरूर लगता है। संग करने से फिर कामना पैदा होती है और कामना से पूर्ति न होने पर क्या होता है, क्रोध आ जाता है। इसलिए बाप बोलते हैं, एक बाप मिल गया तो इच्छा मात्रम अविद्या, कुछ नहीं चाहिए। सुप्रीम सोल बाप, ऊंचे से ऊंचा भगवंत मिल गया तो और क्या चाहिए। इसलिए गीता में कहा है कि जड़ और जंगम पदार्थों को, दोनों प्रकार के पदार्थों को इस दुनिया में जन्म देने वाला एक ही बाप है। क्या, जो जड़ पदार्थों को भी जन्म देता है और चैतन्य आत्माओं को भी जन्म देता है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो कौन है? है? अरे जड़ घड़ा है, जड़ घड़े को बनाने वाला जड़ होगा, घड़ा साकार है, साकार को बनाने वाला साकार होगा या निराकार होगा? है साकार होगा। ऐसे ही जो पांच तत्व हैं, ये स्थूल हैं, साकार हैं या निराकार हैं? साकार हैं। इन पांच तत्वों को जन्म देने वाला भी साकार होना चाहिए, जड़ पदार्थों का बीज होना चाहिए, बीज बाप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और जो चैतन्य आत्माएं हैं उनको भी जन्म देने वाला नंबर वार कोई चैतन्य आत्मा मनुष्य रूप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो वो है जो शंकर पुरुषार्थी याद में बैठा हुआ है, उस अधूरे पुरुषार्थी का संपन्न रूप। क्या, अरे शिव के मंदिर में चारों तरफ देवताओं की मूर्तियां, उन मूर्तियों में मुख्य स्थान पर, चारों ओर देवताओं के बीच में मुख्य स्थान पर शंकर को दिखाते हैं, उनको महादेव कहते हैं, वो ही मुखिया है, उसके अलावा मंदिर में कोई मुखिया नहीं है? नहीं है। कौन, शिवलिंग है। तो वो शंकर का संपन्न रूप है, शंकर को इंद्रियां दिखाते हैं, शंकर की मूर्ति है जिसके चित्र और क्या बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, मूर्त रूप, अमूर्त नहीं, कैसा रूप, मूर्त बनाते हैं। तो वो शंकर का मूर्त रूप लिंग है जो ऐसी संपन्न स्टेज है जिसमें उस आत्मा को, जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, उसको उन इंद्रियों का भान नहीं है, जैसे इंद्रियां हैं ही नहीं, ऐसे संसार में रहता है। सारी दुनिया ग्लानिंग करे लेकिन कान सुनते हुए भी नहीं सुनते, सारी दुनिया बाप की बताई हुई बातों के विरोध में दुष्कर्म करे, आंखें देखती हैं लेकिन देखते हुए भी न देखे, ऐसे ऐसी स्टेज को कहा जाता है संपन्न निराकारी सोसाकारी लिंग रूप स्टेज, जिसकी व्याख्या ये लिंग क्या है, ये कैसे है, ये कब बना, इन डिटेल प्रश्नों का जब समाधान कोई दुनिया में बड़े से बड़ा ग्रंथकार शास्त्रकार नहीं कर सका, वो समाधान शिव बाप की वाणी से होता है। वो शिव बाप की वाणी दो प्रकार से है, एक दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी, क्या कहते हैं उसको, वेद वाणी, ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी निकली। वो वेद वाणी के लिए मुरली में ही बोल दिया, इसको गीता ज्ञान कहेंगे, क्या कहेंगे, गीता ज्ञान कहेंगे, लेकिन ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। देवताएं अमृत पी करके देवता बने या सिर्फ ज्ञान लेकर के देवता बने, अमृत पिया तब देवता बने। और अमृत कैसे निकला, मनन चिंतन मंथन मनुष्य करते हैं तब अमृत निकलता है। मनन चिंतन मंथन करने में मुख्य कौन कौन दिखाए गए हैं बताओ, है, अरे बताओ भाई, मंथन करते हुए किनको किनको दिखाया है, देवताओं को और असुरों को, उन्हीं का विशेष पार्ट है और कोई आत्माओं का विशेष पार्ट नहीं है, है? है? उन्हीं का पार्ट है, है? कछुआ का भी पार्ट है। कहते हैं वो विष्णु जो है, कौन, विष्णु नो विशैताल, किसी भी जन्म में वो पर पुरुष या पराई स्त्री का विष को पान नहीं करता। कैसा पार्ट है, कैसा पार्ट, विष किसे कहा जाता है, पराई स्त्री या पर पुरुष का जो भोग करते हैं उसे ही विष कहा जाता है, जिससे ये दुनिया वैश्या बनती है। वैश्याले काय से बनता है, अरे विष से वैश्याले बनता है, विष से ये सारी दुनिया वैश्यों की बन जाती है। तो विष समझा क्या है, ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आकर के क्या करते हैं इस दुनिया को, है, वैश्यालय बना देते हैं, विशेष बना देते हैं। उन धर्म पिताओं का भी बाप कोई है विष बनाने और विष पीने वालों का बाप बन करके आता है, उन विदेशियों का भी बाप बन करके आता है। अरे शास्त्रों में जो यादव वैश्य दिखाए गए हैं उनका मुखिया किसको दिखाया, अरे यादवों का मुखिया कौन, कृष्ण। इसी तरह शिव महापुराण में जितने भी पात्रधारी दिखाए गए उन पार्टधारियों में सबसे बड़ा विषपाई कौन, शंकर को दिखाते हैं। मुरली में भी बोला इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है, शंकर रूहानी मिलिट्री का मार्शल है। तो वो जब युद्ध होता है तो सारी सत्ता किसके हाथ में आ जाती है, है? मार्शल के हाथ में आ जाती है। इसलिए बताते हैं ये महाभारी महाभारत युद्ध किसने कराया, युद्ध कराने का कौन मुख्य पार्टधारी है जिसने युद्ध कराया है? अरे कृष्ण ने युद्ध कराया, किसने युद्ध कराया, कृष्ण ने युद्ध कराया। और युद्ध में जो महाविनाश होता है या उस युद्ध में सारे ही मारे जाते हैं, स्वर्गारोहण करते समय एक युधिष्ठिर ही बचता है, बाकी पांडव भी है वो भी मारे जाते। तो वो कौन है जो शास्त्रों में दिखाया गया है, महाकाल के रूप में दिखाया गया है, ऐसा रौद्र रूप धारण करता है, विकराल रूप, जिसके नाम से इस ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है, रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ता है, शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं, शंकर ज्ञान यज्ञ नहीं, क्योंकि आदि से ही इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के आदि में ही स्थापना के साथ साथ विनाश की ज्वाला भी प्रज्वलित तो हो चुकी थी। कौन निमित्त बनता है, पहला नाम किसका, ब्रह्मा, और यज्ञ के आदि में बड़े से बड़ी माँ ब्रह्मा कौन, अरे परम ब्रह्म, जगदम्बा तो बाद में, पहले कौन, परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म जिसे दिखाया वो माता के रूप में देह अहंकारी है या आत्मा अभिमानी है, है? देह अहंकारी है, उसका देह अहंकार तब तक नहीं टूटता जब तक मनुष्य सृष्टि के सारे ही प्राणी अपनी देह को नहीं त्याग देते। सबकी देह का त्याग होने के बाद वो अपने देह का अहंकार क्या करता है, त्याग देता है। इसलिए बाद में अहंकार त्याग करने के कारण जब 5000 वर्ष के बाद दोबारा संगम युग आता है तो उस संगम युग में जो पहला सोमनाथ के मंदिर की शूटिंग होती है कहाँ है, अरे सारा ज्ञान भूल गया है, अहमदाबाद में, नाम क्या दिया, अहमदाबाद, जो बोला जो अहमदाबाद है सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप केंद्र सेवा केंद्र अहमदाबाद में है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सेवा केंद्र कहाँ? अहमदाबाद। क्यों माउंट आबू क्यों नहीं? अहमदाबाद तो 1965-66 में बना, उससे पहले गुजरात में कोई सेंटर नहीं था ब्रह्मा कुमारियों का। तो अहमदाबाद को बीज रूप सेंटर क्यों कहा? क्योंकि मुरली में बोला सोमनाथ मंदिर से सोमनाथ और सोमनाथिनी प्रत्यक्ष होते हैं। क्या सारी मनुष्य सृष्टि की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो कहाँ से निकलती हैं? अहमदाबाद से निकलती हैं, जिसका नाम रखा गया है, रखा गया था प्रभु पार्क सेंटर। क्या प्रभु? प्रमाणे प्रकष्ट रूपेण, भू माने उत्पन्न होने वाला, प्रभु पार्क पार करने वाला। कैसा प्रभु? जो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को विषय वैतरणी कहो, विषय सागर कहो, उस विषय सागर से पार ले जाने वाला है। खुद पार जाता होगा तब दूसरों को ले जाएगा, या खुद पार जाएगा नहीं दूसरों को ले जाएगा? है पहले खुद पार जाने वाला है, बाद में ले जाने वाला है। इसलिए नाम दिया है अहमदाबाद। क्या वो अपना देह अहंकार कब तोड़ता है? बाद में तोड़ता है, और एक सेकंड में तोड़ता है। जो बोला बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस परमधाम जा सकते हैं। कौन है वो बाप दादा? कौन है? हैं? अव्वल नंबर में कौन है बाप दादा? जिनके लिए पिछले साल की व्यक्तवाणी में बता दिया कि 18 जनवरी स्मृति दिवस नहीं है, 5 दिसंबर है स्मृति दिवस, जब आत्माओं के बाप और आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है परमात्मा, जिसका नाम परमपिता के बाद लिया जाता है। क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा, ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परमपिता, कहते हैं हमेशा कहेंगे शिव शंकर। बड़े का नाम पहले, बच्चे का नाम बाद। आज भी ये परंपरा मां चली आ रही है। राम एंड सन्स कंपनी, बच्चों को बाद में और बाप को बाप का नाम पहले लेते। ये परंपरा कहां से शुरू हुई है? संगम से शुरू हुई। तो वो बच्चा जो बाप समान स्टेज धारण करता है, वो सच रूपी रंगमंच पर आज से ही है और अंत तक रहता है। बीच में कोई गैप होने की बात ही नहीं। जो बोला तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो सारे बच्चे उतार लेंगे या कोई बच्चा होगा जो पहले इस सृष्टि पर उतारेगा? है इस धरणी में एक है स्थूल धरणी, और दूसरी है चैतन्य धरणी। वो कौन सी चैतन्य धरणी है? जिस चैतन्य धरणी में परमधाम उतारा जाता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, जिसको गीता में कहा है परमात्मा इति उदाहरत, उसे परमात्मा कहा जाता है। तीन प्रकार की आत्माएं बताई, क्षर अक्षर, क्षर माना पतित होने वाली और जो कभी पतित नहीं होती, सुप्रीम सोल शिव अक्षर और बाकी 500 करोड़ सब क्षरित होने वाली, शक्ति क्षीण करने वाली। शक्ति क्षीण होते होते कैसी हो जाती है? पत्थर बुद्धि बन जाती है, लोहे के समान काली बन जाती है। उनमें से एक आत्मा ऐसी भी है जो गीता में बताई है परम पद धारण करती है। वो परम पद है विष्णु, जिसको कहा जाता है परमात्मा। मनुष्य गुरुओं ने बात उड़ा दी, आत्मा सो, अरे भाई एक आत्मा सो परमात्मा या सारी आत्माएं परमात्मा, किसको याद करें? एक को याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी या सारी आत्माओं को याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी? अनेकों को याद करेंगे तो बुद्धि भटक जाएगी, और एक को याद करेंगे तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। तो तीन प्रकार की आत्माएं हुई, मूल रूप में क्षर और अक्षर, लेकिन क्षरिल होने वाली आत्माओं में एक ऐसी पुरुषार्थी आत्मा भी है जो मनुष्य शक्ति के महाविनाश तक, महामृत्यु के समय तक उस प्रबल इंद्रिय से पुरुषार्थ करते करते ऐसी स्मृति का अभ्यास पक्का कर लेती है कि क्षरित होने का नाम निशान भी नहीं रहता। इसलिए उसको अबोघ वीर्य कहा जाता है। वो संपन्न स्टेज की यादगार है या पुरुषार्थी स्टेज की यादगार है? संपन्न स्टेज की यादगार है। ओम शांति।